आज तुम्हारा कितना अपयश हो रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हारी स्त्री को मार दिया गया और हम लोग स्त्री के लिए यहाँ आए और ये धर्म का पालन। धर्म मुसिज्य वर्तस्व यथा धर्मे तथा बले। एक धर्म होता है, एक ताकत होती है। अपने ताकत का भरोसा करो राम, धर्म का भरोसा मत करो। अनृतम त्वय करणे किम न बद्धस त्वया बिना। सत्य वचन के अंदर चलते आपने अपने बाप को झूठा बना के भेजा है राम। अधर्म संस्कृत धर्म है। देखो जिस धर्म के द्वारा पालन करने के द्वारा अधर्म बढ़ता है वो धर्म किसी काम का नहीं होता है। धर्म होता है वो शक्ति बढ़ाने के लिए, तेज बढ़ाने के लिए और यश बढ़ाने के लिए होता है कि अधर्म बढ़ाने के लिए होता है। यदि आप इस बात को उस दिन समझते कि हमारे यहाँ एक दशरथ का नहीं सारे रघुकुल का ये रिवाज है, रघुकुल की मर्यादा है कि जो बड़ा लड़का होता है वो राजगद्दी का अधिकारी होता है, ये धर्म था कि नहीं? यदि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल की रीति है कि बड़े के रहते हुए छोटे को राज्य नहीं मिलता, ये आपका धर्म था कि नहीं? उस धर्म को आपने क्यों छोड़ा? इसलिए आपके मन में आए वही धर्म हो ऐसा नहीं है, जिससे कष्ट प्राप्त करना हो वही धर्म नहीं होता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। जिसके पास में आज राज्य होता है, जिसके पास में धन होता है, वैभव होता है, लोक शक्ति होती है, वो आज बहुत आगे बढ़ गया होता है। स्वयं अर्थम परित्यज्य। आपने अर्थ का त्याग किया और धर्म का सेवन किया, उसका परिणाम ये निकला। महाराज जिसके पास अर्थ होता है उसके सब मित्र होते हैं। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि और यस्यार्थास्तस्य बांधवः। जिसके पास में मित्र होते हैं, जिसके पास में पैसा होता है उसके सब मित्र, ये मेरे मित्र हैं साहब, ये हमारे मित्र हैं, ये वो है, क्योंकि पैसा है उसके पास। और सगे संबंधी सब उसके बन जाते हैं कि साहब ये हमारा भाई लगता है, सगा भाई है क्या? नहीं, मामा के मामा के मामे के मामे का बेटा भाई है। कितना दूर का भाई? मेरा भाई है, क्योंकि उसके पास पैसा है। यस्यार्थास्तस्य बांधवाः और यस्यार्थास्तस्य पुमान लोके। जिसके पास पैसा है लोग उसको कहेंगे ये पुरुष है भाई, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत अच्छा आदमी। और यस्यार्था सच पंडित है। जिसके पास पैसा होगा लोग कहेंगे बड़ा विद्वान आदमी, बड़ा समझदार है साहब, समाज में बहुत प्रतिष्ठित है। क्यों? किस बात को लेकर? पैसा है। ये साहब बहुत अकलमंद आदमी है, क्योंकि पैसा है। हर बात का अंत में उत्तर पैसा ही होता है। इसलिए महाराज आपके पास कुछ नहीं, तापस वेश विशेष उदासी। आप तपस्वी के वेश में आए, आज आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास में धर्म रहा, लेकिन धर्म ने आज देखो आपको कहां लंका के अंदर धूली चटा दी। यदि आज आपके पास राज्य होता, आप तो रहते अयोध्या में, सेना लड़ती, अब रावण की हिम्मत होती क्या कि सीता को ले जाए? लेकिन आपके पास धर्म था, इसलिए आपकी दुर्दशा हो गई। एक धन न होने के कारण से आपके अंदर कितनी बातें आई। देखो गरीब आदमी है वो खूब हंसता है तो उसकी हंसी में वो ताकत नहीं होती। और गरीब आदमी के पास में यदि क्रोध होता है तो उसके क्रोध का भी कोई असर नहीं होता। पैसा पास में खूब हो फिर हंसता है तो उसकी हंसी और होती है, उसका क्रोध भी और ही ढंग का होता है। हर्ष है, कामश्च, दर्पश्च, क्रोध है, धर्म है, समूह दम है, और ही ढंग का होता है। इसलिए हे महाराज आपको अब अपने राज्य की तरफ विचार करना चाहिए था। पिता के कहने से जंगल में सीधे साधेपन से आगे कि धर्म है, धर्म है, धर्म है। स्त्री को ले गया रावण कि नहीं, स्त्री को प्राप्त करना धर्म है, धर्म है, ये तो हम भी मानते हैं कि धर्म है। परंतु आपने ये क्या सोचा कि पिता की आज्ञा मान करके आप इतने बड़े राज्य को ठुकरा के आ गए? खैर हुआ सो हुआ, अब आप रोने से क्या होगा? सीता को यदि मेघनाद ने मारा है तो अपने लोग यहाँ आए हैं तो इसका अर्थ थोड़े ही कि सीता के मर जाने के बाद चले जाएंगे। अब अगला धर्म देखो, अगला धर्म है कि सारे राक्षसों का नाश करके यहाँ से जाओ, ये भी एक अपना धर्म है। उठाओ, रोने से काम नहीं चलेगा राम, अब तो रुलाने से काम चलेगा। इनको रुलाओ तब जाकर के पार पड़ेगी। अयम नवोदिता प्रियार्थम जनक सुता निधनम निरीक्ष रुष्ट शरथ गज हयाम सराक्षसेन्द्राम दृशमिशुभिर विनिपातयामि लंकाम। राम जी महाराज थोड़ी स्वस्थ हुए ना, लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज मैंने जो धर्म और पैसा इसमें जो पैसे की बड़ाई की थी वो तो केवल आपको थोड़ी देर राजी करने के लिए कही थी, वास्तव में तो धर्म ही बड़ा है पैसा बड़ा नहीं है। ये बात लक्ष्मण जी ने वापस बोल दी। रामम आश्वास माने तू लक्ष्मणे भ्रातृवत्सले। लक्ष्मण जी के द्वारा जब ऐसा आश्वासन मिला तब भाई दौड़े दौड़े विभीषण जी आए। विभीषण जी आके कहने लगे कि अरे आप लोगों ने यहाँ पर इतनी बंदरों ने आकर क्या मीटिंग कर रखी है, हम तो वहाँ पीछे से बहुत बड़ा मोर्चा संभाल रहे थे और हमारे गुप्तचर लंका में गए थे, वहाँ हमने कुछ और ही देखा है। बंदरों ने कहा क्या करें राक्षसराज विभीषण जी, जब सीता ही मार दी गई तो हम किस लिए लड़ाई करें। सीता मार दी क्या? हाँ सीता को मार दिया इंद्रजीत ने, मेघनाद ने मार दिया। हनुमान जी जोर से चिल्ला के बोले कि भाई सीता को मार दिया। विभीषण हंस के बोले कि अच्छी अच्छी तो मेघनाद ने मार दिया और आची सीता आ गई। बिल्कुल झूठी बात है। अरे सुनो सीता अशोक वाटिका में ऐसी जगह है वहां बिना राम जी के आ ही नहीं सकती, ये केवल उसकी माया थी। और देखो हम तुमको एक बहुत बड़ी बात बताए कि इस समय में ये निकुम्बला क्षेत्र में गया हुआ है और वहां जाकर के बहुत बड़े यज्ञ के अंदर बैठा हुआ है, इस यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर बड़ी भारी आफत आ जाएगी। विभीषण जी ने कहा कि हे राघव हनुमान जी को तैयार करो, मैं सीता को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। सीता अशोक वाटिका से बाहर शत्रु पक्ष के द्वारा लाई नहीं जा सकती। इतना सीता के चारों तरफ ऐसा पहरा दिया हुआ है, किसका पहरा? राक्षसों का पहरा नहीं, एक देवी शक्ति उसका पहरा। यदि ऐसा ही होता तो रावण कब का ही कर देता। बहुत बड़े पहरे में है वो आपके अलावा कहीं जा ही नहीं सकेगी। याच्यमान सुबहुसो मया हित चिकीर सुना। रावण ने बहुत बार प्रयत्न किया था लेकिन उस समय में सीता को वो ला नहीं सकता था। उसने देख लिया कि सीता है वो साम दाम दंड आदि के द्वारा लाई नहीं जा सकती है, तो चलो अपने मोहमयी सीता बना करके इनके मन में क्षोभ पैदा करो। तो देखो वो क्षोभ करने के लिए किया है और इधर वो निकुम्बला क्षेत्र में चला गया है। निकुम्बला क्षेत्र में जाकर वो बहुत बड़ा भारी यज्ञ करके आपके युद्ध के अंदर ऐसा विघ्न पैदा करेगा कि राम फिर उसको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए झूठा संताप तो छोड़ो और सच्चे काम में आओ और आप लोग स्वस्थ हो, लक्ष्मण को मेरे साथ भेजो। लक्ष्मण के साथ आपकी सेना के जितने वरिष्ठतम आपके पास में ये सैनिक है उनको भेजो, अंग जी को भेजो, हनुमान जी को भेजो और बंदरों को भेजो, नल है नील है मैंद है दिविद है, इन सब को भेजो। और यदि आज लक्ष्मण जी उसको मार देंगे, निश्चित मार देंगे, तो वह ये हमारा युद्ध हमारे हाथ में आ जाएगा और यदि किसी प्रकार से बच गया तो बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी। पतत्रिणय इवा सौम्य शरा पाश्यंति शोणितम। लक्ष्मण जी के तुणीर में रहने वाले बाण इस मेघनाद के ही खून के प्यासे हैं और आज मेघनाद यदि मारा गया तो महाराज आप बहुत बड़ा युद्ध जीत जाओगे। हे महाराज अब आप इसके लिए तैयार हो जाइए और दूसरी मायामयी बातों को छोड़िए और देवताओं को संशय में डालने वाले मेघनाद के यज्ञ को भ्रष्ट कर दीजिए। राम जी महाराज तो अभी शोक के अंदर डूबे हुए थे। राम जी ने कहा कि विभीषण क्या बोले, आधी आधी बात सुनी, आधी मैंने नहीं सुनी, आधी ध्यान में नहीं आई, दोबारा कहो। विभीषण जी कहने लगे कि महाराज आप तो जिन जिन छावनियों में मुझे जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे थे उन सब की जानकारी मुझे मिल गई और उसके अनुसार मैंने आपकी सेना के भी अलग अलग छावनियां बनाकर अलग अलग मोर्चों पर मैंने रख दिया है और ऐसा युद्ध का ये ढांचा मैंने बनाया है कि अब अपने किसी प्रकार से किसी राक्षस के द्वारा मरने वाले नहीं हैं। परंतु महाराज, यदि आपको अपना यश प्राप्त करना है, यदि आपको सीता प्राप्त करनी है, तो इस समय में निकुंभला क्षेत्र में जाना चाहिए। आप यहीं रहेंगे, सुग्रीव यहीं रहेंगे और दूसरे लोग भी यहीं रहेंगे। निकुंभला क्षेत्र में जाकर यदि रावण के पुत्र मेघनाद ने बहुत बड़ा यज्ञ पूरा कर लिया और उससे यदि उसको ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हो गई, तब महाराज आपका जितना बड़ा मुश्किल है। तमादतायनम हन्याद इंद्र शत्रु सते वध है। यदि उसका यज्ञ पूरा हो गया और अग्नि ने उसको वरदान दे दिया तो राम आप निश्चित समझो कि आपका वध हो जाएगा। और यदि आपने आज उसका यज्ञ पूरा नहीं किया तो आज निश्चित रूप से मेघनाद मारा जाएगा। अतः आपको तो ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, अब समझ में आया विभीषण, ये मेघनाद तो बहुत बलवान है। अरे वो तो ऐसा है, आकाश के अंदर छिप जाता है तो वो दिखता भी नहीं है। बिना निकुंभला क्षेत्र में गए ही वो इतनी शक्ति दिखाता है, और तुम्हारे कहे अनुसार यदि निकुंभला क्षेत्र में चला गया तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओहो, तो क्या करें कि लक्ष्मण जी को भेजो। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हनुमान आदि बांदरों को अपने साथ ले जाओ, जामवंत जी को ले जाओ, अंगद जी को ले जाओ, और बड़े बड़े तुम्हारे जो प्रेमी नल नील आदि उन सबको साथ में लेके जाओ। ये रजनीचर आज रात्रि में कुछ करेगा सो कर लेगा, और अपने को भी इसको भ्रष्ट करना है तो कर देना चाहिए, अन्यथा ये भाई आगे जाकर बड़ी शक्ति प्राप्त करेगा। अभिज्ञस्तस्य मायानाम पृष्ठतो अनुगमिष्यति। तुम सब माया को जानने वाले हो, तुम्हारे साथ में सेना चलेगी, जाओ लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण जी महाराज ने अपने हाथ में धनुष लिया, बाण लिया, और धनुष बाण तो लिया ही, साथ में एक चीज सबसे बड़ी ली हो, क्या लिया, ध्यान रखना। उन्होंने जाकर राम जी के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया और राम जी का स्वरूप अपने मन में बैठा लिया। ये राम जी का ये सबसे बड़ा शस्त्र लिया उन्होंने, और भगवान श्री राम से उसने कहा कि हे महाराज, आज आपकी कृपा से ये मेरे बाण कुछ काम करके बताएंगे। लंका के अंदर उसी प्रकार से ये दौड़ेंगे जैसे हंस है वो पानी के पास में दौड़ता है, पुष्करणी के पास दौड़ता है, कमलनी के पास जैसे हंस रहता है, ऐसे लंका के अंदर मेरे बाण रहेंगे। मेरे बाणों के द्वारा आज ये विदीर्ण हो जाएगा, लेकिन ये सब आपकी कृपा से होगा। इतना कहकर के और राम जी महाराज के भाई लक्ष्मण जी उनको फिर प्रणाम किए, प्रदक्षिणा की और अपने साथियों के साथ निकुंभला क्षेत्र में चल दिए। विभीषण जी उनके साथ में है। निकुंभला क्षेत्र उस युद्ध भूमि से बड़ा दूर है, लेकिन यदि वो रस्ते रस्ते पहुंचते तो कितने राक्षस मार देते उनको, युद्ध हो जाता, ताकि उसमें समय लग जाता, उधर यज्ञ पूरा हो जाता। लेकिन विभीषण जी महाराज उसका एक गुप्त रास्ता भी जानते थे और टेढ़े मेढ़े ढंग से वो उधर के लिए उनको ले गए। साथ में उनके पास में बांदरों की सेना है, रिंछराज की सेना है, ये सब गए और वहां पर ऐसे छिपते छिपाते गुप्त रास्ते से गए तो वहां उन्होंने देखा कि निकुंभला क्षेत्र के चारों तरफ बड़ी रक्षा हो रही है और उस रक्षा के अंदर बीच में जो निकुंभला क्षेत्र है उसमें वह राक्षस राज बैठा हुआ है। उस समय में विभीषण जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण यहां कुछ भी बात करनी हो तो बहुत कम बात करनी है, यहां तो केवल युद्ध करना है। देखो चुपचाप धीरे धीरे इन वृक्षों की ओटों में से अपने लोग चलते रहो और जब तक अपना काम पूरा न करे उससे पहले पहले उसके ऊपर एक साथ धावा बोल दो। धावा बोलने पर वो अपनी जान बचाने के अंदर लड़ाई करेगा और जब वो युद्ध करेगा उस समय में उसका यज्ञ भंग हो जाएगा। इसलिए एक साथ टूट पड़ो, लेकिन पहले आवाज मत करो। शत्रु सेना अपनी जगह सावधान है, लेकिन जिस गुप्त मार्ग से आए इधर इनको भी पता नहीं, सैनिकों को भी पता नहीं है। आओ आओ आप लोग मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको बचाता बचाता चल रहा हूं। ऐसा सुनकर के विभीषण जी महाराज एक जगह खड़े होकर अब लक्ष्मण को सब बंदरों से कह रहे, अब तुम बाण बरसाओ, कोई पत्थर बरसाओ, तुम जो है शिला बरसाओ, वृक्ष बरसाओ, ये रहा मेघनाथ। लक्ष्मण जी महाराज ने बाण लगा करके ये गया बाण, अब मेघनाथ के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। बंदर लोग पत्थर की वर्षा करने लगे, वृक्ष की वर्षा करने लगे। बड़ा भारी एकदम कोलाहल हुआ, और कोलाहल के पहले तो कई देर तक सहन करता रहा मेघनाथ, स्वाहा स्वाहा करता रहा। लेकिन जब पत्थर पर पत्थर पड़ने लगे, उसके अग्नियां बुझने लगी और उसके ऊपर ही आकर के पत्थर पड़ने लगे, वृक्ष गिरने लगे, तब भाई उसको बड़ा भारी क्रोध आया, और क्रोध आते ही वो अपने स्थान से खड़ा हो गया। खड़ा होकर के वो शस्त्र लेकर के, और उसका काम बीच में ही रह गया, और उछल करके युद्ध में आ गया। विभीषण जी ने कहा अब काम बन गया अपना, अपने उसका यज्ञ पूरा नहीं होना था। अब भाई वृक्षांधकारा निर्गत्य, वो भी वृक्षों में छिपा हुआ था, वो भी बाहर आ गया रावण पुत्र, और उसका एक रथ सजा हुआ था ही। उसने देखा कि अब सबको भगा भगू के फिर मैं अपना काम करूंगा। वो रथ के अंदर बैठ गया, रथ के अंदर बैठा तो इधर हनुमान जी महाराज वो उसके सामने आए। अब हनुमान का और विभीषण का बड़ा आपस में गहन युद्ध हुआ। उस समय में हनुमान जी महाराज बहुत बड़े पर्वताकार दिखाई दिए, वृक्ष उठाकर उखाड़ करके उन्होंने मेघनाथ के ऊपर पटका, मेघनाथ ने बाणों से उसको काट दिया, और फिर उसके साथ के राक्षस थे एक साथ हनुमान जी के ऊपर टूट गए। कोई के पास शक्ति है, कोई के पास गदा है, कोई के पास कुंत है, भाले है, ऐसे तीखे शस्त्र, घातक शस्त्र सब लेकर हनुमान जी पर आए। बंदरों ने देखा कि अरे अरे ये तो मुश्किल कर देगा। तब हनुमान जी महाराज को बचाने के लिए उन राक्षसों को बाहर से, उन बंदरों ने बड़ी तरह से पिटाई चालू की, तो पिटाई चालू करने पर सब घबरा गए। क्षयम एवी न कुरियाद राक्षसानाम उपेक्षित है। इधर भाई जो है मेघनाथ ने कहा रे ये तो बहुत से बानर आए, ये तो राक्षसों, ये तो क्षय कर देगा, हमारा नाश कर देगा, इसलिए चलो चलो बंदरों की सेना की तरफ चलो। अब उस सारथी को कहा तो सारथी ने बंदरों की सेना की तरफ उस रथ को घुमाया, और भाई उस समय उस राक्षस के ऊपर खूब जो है बरसात की गई। हनुमान ने कहा ओ मेघनाथ तुमने तो बहुत बड़ा यज्ञ किया था, आज मैं वायुपुत्र हनुमान तुमको ललकारता हूँ, आओ यदि तुम्हारे में जीवन है तो मेरे से युद्ध करो, द्वंद्व युद्ध करो, बाहुओं से युद्ध करो, भुजाओं से युद्ध करो, क्या ये पागलों को सी लड़ाई करते हो, जो अदृश्य होना युद्ध करना ये पागलों का काम है, योद्धाओं का काम नहीं है। हनुमान जी की बात सुनकर गए, और भाई विभीषण जी महाराज के, विभीषण जी सहित लक्ष्मण जी भी वहां आ गए, और विभीषण जी ने कहा यह सहवा देखो देखो सुनो, ये इंद्र को जीतने वाला है, ये रावण का बेटा है, ये मेघनाद है, ये हनुमान को ललकारने की सोचता है तीक्ष्ण बाणों से, ये देखो लक्ष्मण ये हनुमान को मारना चाहता है, हम लोगों को मारना चाहता है, रावणीम जही, ये रावण पुत्र मेघनाद मारने योग्य है, लगाओ बाण इसके। विभीषण जी ने इस प्रकार से अंगुली कर करके और मेघनाथ को जब कहा, तब मेघनाथ उधर तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया, इधर जो है मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया। मेघनाथ को क्रोध आया तब मेघनाथ चिल्लाया, मेघनाथ चिल्लाने लगा, विभीषण जी ने उसकी परवाह नहीं की, लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण इधर आओ, इहो उपहारम भूतानाम बलवान रावण आत्मज है, रावण का बेटा बड़ा बलवान है, और यदि यहाँ अपने को हरा भी दिया तब भी ठीक नहीं, फिर ये यज्ञ में बैठ जाएगा, इसलिए इसको तो अब अवकाश देना ही नहीं है, मृत्यु पर्यंत इसको युद्ध में लगाते रहो, जब तक नहीं मरे तब तक आता है बाण के ऊपर बाण, बाण के ऊपर बाण छोड़ते रहो, जब तक ये निकुम्बिला के क्षेत्र में नहीं आता है, इस वटवृक्ष के नीचे नहीं आता, उससे पहले पहले इसको सारथी सहित, घोड़े सहित, रथ सहित मार दो। लक्ष्मण जी महाराज तैयार हो रहे हैं, इंद्रजीत ने कवच पहन रखा है, तलवार उसके साथ में, रथ के ऊपर बैठा हुआ है और समावये त्वाम समरे सम्यक युद्धम प्रपच्छमे। उस समय में कहा, आओ लक्ष्मण, तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो, हम तुमको युद्ध का निमंत्रण देते हैं, आओ। परंतु आप विभीषण को फटकारने लगे, विभीषण हमारे बाप के भाई होकर के तुम आज क्या शब्द बोलते हो? अरे राक्षस, मैं रावण का बेटा हूं तो तुम्हारा भी तो बेटा ही हुआ, तुम्हारे अंदर जरा सी भी जाति का विचार नहीं आया, कुल का विचार नहीं आया? अरे तुम और रावण एक मां के बेटा हो, तुमको अपना भाईपना याद नहीं आया? तेरे में और रावण में एक ही खून बह रहा है, विभीषण ये बात तुम भूल गए? नाम तुम्हारा विभीषण है, हम तुमको आज धर्म दूषण बोलते हैं, तुम्हारे लिए हमें बड़ी चिंता होती है। संत पुरुष जब तक रहेंगे संसार में तब तक विभीषण तुमको कलंकित करते रहेंगे, अपने आदमियों को छोड़ करके दूसरों में चले जाना, इससे बढ़कर और क्या मनुष्य की मूर्खता होगी? तुमने कोई बहुत बड़ा बुद्धिमानी का काम नहीं किया विभीषण, तुम वेद सी महदंतरम, चाहे कुछ भी हो अपने में और परायों में बड़ा भेद रहता है, अपना अपना ही होता है, परा पराया ही होता है। अरे यदि पराया जन गुणवान है और अपना जन निर्गुण है तो अभी अपनत्व है वो तो एक सबसे बड़ा गुण है ही, और वो पराया है ये सबसे बड़ी उसमें कमी है ही ना। अपने पक्ष को छोड़कर पराये पक्ष में जाने वाले विभीषण तुम अक्लमंद कहलाते हो, बुद्धिमान कहलाते हो, हमारी तरफ यूं मारने का इशारा कर करके तुम लक्ष्मण को समझाते हो, आज तुम निशाचर होकर के हमसे विपरीत हमारी मृत्यु को तुम देखना चाहते हो, तुमको विचार नहीं आता? आज यदि हम तुमको कुछ बोलते हैं तो तुम्हारी बोली बंद है, तुम बोल नहीं सकते हमारे सामने। विभीषण ने कहा, आओ बालक बोल ले, तुमको जितना बोलना उतना बोल ले, क्योंकि बार बार मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम अब थोड़ी देर में मरने वाले हो। तुम रावण के पुत्र हो, इस प्रकार मेरे भी पुत्र हो, लेकिन तुम ये क्यों मानते हो कि तुम जैसा पाप करते हो उस पाप में हम भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाएं? मैं राक्षसों के कुल में जरूर जन्म लिया हूं, लेकिन राक्षसों के जैसा काम करता हूं? एक यही काम नहीं, तुमने यहां लंका में जितने भी पाप किए हैं, किसी भी पाप में मेरा समर्थन हुआ है? तुम बार बार देवताओं से लड़ते थे, तुम बार बार और गंधर्वों से लड़ते थे, जहां पाप का युद्ध होता था वहां कभी तुमने विभीषण को देखा? मैं कभी तुम लोगों के पाप के साथ शामिल नहीं हुआ, तो मैं इस पाप के साथ कैसे शामिल हो जाऊं कि सीता का हरण करो और मैं रावण के पक्ष में लड़ूं? क्या तुम उस दिन सभा में नहीं थे? क्या मैंने अपने बड़े भाई के सामने निवेदन नहीं किया था कि दूसरे का धन हरना और दूसरे की स्त्री हरना ये सबसे बड़ा घर में आग लगाने का पाप होता है, ये पाप मत कीजिए? क्या उस समय मैंने ये नहीं कहा था कि सीता को आप दे दीजिए? क्या मैंने उन रावण से कहा था कि मैं शत्रु में जाकर मिलता हूं? मैंने कभी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मुझे निकलने के लिए बात की, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। उनके हित की बात कहता तो बार बार कह दे तू शत्रु पक्ष का मिला हुआ आदमी है, मुझ पर दोषारोपण किया था, कितने अभिमान से उन्होंने ये बात कही थी। अतएव रावण की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ, राम का पक्ष लेने के लिए आया हूँ। तुम लोग कालपास में बंधे हुए हो क्योंकि तुम अधर्म करते हो। जैसे कोई आदमी जहर गिट लेता है, जहर निकलने के बाद वो खूब हंस करके बोलता है तो लोग ये समझते हैं कि थोड़ी देर की हंसी है, अब थोड़ी देर में मरने वाला है, ऐसे ही तुम सब लोग पाप का जहर पी चुके हो, तुम्हारी मौत मुझे सामने दिखती है, फिर तुम्हारी मौत में मैं क्यों मरूं? मैं ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता था कि तुम जहर मत पियो, लेकिन तुमने पिया है तो इसका फल भी भोगना पड़ेगा। निदर्शय स्वात्म बलम समुद्यतम कुरुष्व सर्वायुध सायक व्ययम् न लक्ष्मणस्य इत्यहि बाण गोचरम् त्वमद्य जीवन सबलो गमिष्यसि। सेना सहित मारा जाएगा, देखना तू अकेला क्या मरेगा, सब मरोगे तुम। तुम्हारे पास जितना बल है आओ उस बल को लेकर के आओ तो सही, तुम्हारे जितने आयुध है और वो आयुध आएंगे, आज लक्ष्मण के द्वारा मारे जाओगे, कोई तुम्हारे यहां ठहरने वाला नहीं है। विभीषण जी महाराज के वचनों को सुनकर के वो मेघनाद बहुत क्रुद्ध हो गया, अपने हाथ में शस्त्र लिया, रथ के ऊपर बैठा और वो एक बड़े भारी युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने एक अपने हाथ में घोटा लिया और घोटा लेकर के रथ में रखा, बाणों को लिया, धनुषों को लिया। रावण का पुत्र मेघनाद क्रोध में अंधा हो गया और अब जो है वो बांदरों की सेना के लिए टूट पड़ा। वाचैनम सुसंदब्धे सौमित्रम स विभीषणम, विभीषण सहित लक्ष्मण को फटकारते हुए कहने लगा, लक्ष्मण क्या तुम अपने बड़े भाई से मिलकर के आए हो? लक्ष्मण कम से कम तुम मरने से पहले अशोक वाटिका में जाकर एक बार सीता के चरणों में प्रणाम तो कर आते, क्योंकि अब तुम्हारी अंतिम अवस्था है, तुम मेरे बाण से आज मारे जाओगे। लक्ष्मण मुक्त वर्षम मिवाकाशे धारी शत संयुगे, आज तुम किसी प्रकार से बचने वाले नहीं हो, मेरे बाण से तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तीक्ष्ण बाण, तीक्ष्ण शूल, इनके द्वारा कहां तुम बचोगे? तुम यमराज के लोक में जाने वाले हो। मैं किस प्रकार से गर्जना कर रहा हूं, मेरे सामने तुम ठहर कैसे सकोगे? अब मैं बड़े बड़े वज्र के समान कठोर बाणों से तुमको मारूंगा और फिर राम को मारूंगा। क्या तुम उस दिन को भूल गए जिस दिन हमने तुमको नागपाश में बांधा था, मूर्छित हो गए थे? उसके बाद भी मैंने तुमको घायल करके छोड़ दिया था, फिर भी तुम हमारे सामने लड़ाई करने आ गए। रावण के पुत्र मेघनाद की बात सुनकर के लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, वाह भाई वाह, तुम अपने मुंह से बड़ाई करते हो, इसका मतलब तुम्हारी बड़ाई करने वाला दूसरा कोई पुरुष रहा है नहीं, सभी मर गए। कार्याणाम कर्मणा पारम यो गच्छति स बुद्धिमान, देखो तुमने जिस काम के लिए कहा है ना, हम तो केवल मूर्छित हुए, नागपाश में बंधे, लेकिन कार्य का अंतिम छोर तो तुमसे नहीं हुआ, मरे तो नहीं ना हम तुमसे, तो हम मृत्यु की बात करते हैं। तुम बोल करके वाणी के द्वारा चाहे जो कुछ बोल करके अपने को कृतार्थ मानते हो, तुम अपने को अंतरहित मान करके मानते हो, हम अंतर्धान हो जाते हैं। अरे अंतर्धान होकर के लड़ना किसका काम है? ये तो काम कायरों का होता है, सामने लड़ो, सामने किसका बल है पता चल जाएगा। इस प्रकार से कहकर के दोनों आपस में बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। लक्ष्मण के ऊपर इंद्रजीत ने बड़ा प्रहार किया, वो व्यथित होने लगे, उनके शरीर के ऊपर बाणों के घाव होने लगे। उस समय में मेघनाथ कहने लगा, पत्रिण शित धारास्ति शरा मत कर्म कच्युता, अरे मेरे शरीर, मेरे बाणों से तुम्हारे शरीर से देखो कितना खून निकल रहा है, लक्ष्मण अपने जीवन को संभालो। आहो लक्ष्मण, ये गीद कौवे वगैरह सब तुम्हारे मांस के प्यासे हैं, लो मैं बाण छोड़ता हूँ। लक्ष्मण ने कहा, अरे भाई तेरे पास में बाणी का ही बल रह गया, बाणी का ही बल रह गया, बाण का बल खत्म हो गया क्या? तुम बातें क्यों बनाते हो? तुमको इतना समय कहाँ से मिलता है? मेरे पास इतना समय नहीं है भाई कि मैं तुमसे बात करूं, क्योंकि योद्धा के पास में वाणी चुप रहती है, बाण काम करता है, बाणी की जगह बाण काम किया करता है। ऐसे करके लक्ष्मण जी ने 5 बाण छोड़े, वो जलते हुए 5 बाण गए, फिर उन बाणों को उसने काट दिया। बाणों को काटने के बाद फिर उसने लक्ष्मण जी की तरफ 3 बाण छोड़े और फिर जो है इन दोनों का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। एक तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ मेघनाद है, ये दोनों ही सिंह के समान जय की इच्छा रखने वाले एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। ऐसा लगा कि जैसे आकाश से कोई 2 ग्रह आकर के जमीन पर ग्रह आकर के लड़ते हों, ऐसा लगा कि जैसे कोई गुफाओं से 2 सिंह आकर के लड़ते हों, ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई 2 हाथी आकर के लड़ने लगे हों, ऐसा लगा कि जैसे कोई 2 बादल मूर्तिमान होकर के लड़ते हों। खूब जोर से इनका आपस में युद्ध हुआ। उस समय में विभीषण ने पास में आकर कहा, राघव ही लक्ष्मण, देखो मैं बहुत अच्छे शकुन देख रहा हूं, मेघनाथ के प्रतिकूल शकुन हो रहे हैं, अब तुम्हारे बाण के द्वारा मारा जाएगा। लक्ष्मण उत्साह रखना, लक्ष्मण मेघनाथ से घबराना नहीं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी को कहा। लक्ष्मण जी ने तीखे सर्प के समान जहरीले बाण अपने धनुष के ऊपर रखे और जो है उन्होंने बाणों की वर्षा की। उन बाणों से मेघनाथ घायल हुआ, परंतु फिर वो वापस व्यवस्थित हो गया और व्यवस्थित होकर के कहने लगा, क्यों रे बहुत बहुत देर हो गई लक्ष्मण तुमको, तुम हमारे बाणों को कैसे भूल गए, क्यों तुम हमारे से युद्ध करने आए। ऐसा वो बकने लगा और उसने 7 बाण लक्ष्मण के ऊपर डाले, 10 बाण हनुमान जी पर डाले और 100 बाण उसने विभीषण के ऊपर डाले कि तू है सब खास जड़, तू है। 100 बाण विभीषण पर डाले। उस समय में रामानुज लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि अच्छा इतना ही बाण है तुम्हारे पास, ये बाण तो हमने यूं हंसी खुशी काट दिए। नैवम रणगता सूरा, अरे सूरवीर ऐसे बाण थोड़ी फेंका करते हैं, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है फिर पिछले बाणों की बड़ी बड़ाई करते हो। अरे सूरवीर ऐसे बाण नहीं फेंकते, तो कैसे फेंकते हैं, ऐसे बाण फेंकते हैं।